First of all, I just want to make sure. Jugal, ये जो नाम जो दिया था 23 कैंडिडेट हैं, दो नाम मिस हो गए हैं, तो किता जो घर में कोई गया था, घर में कोई है ना? अच्छा, कौन गया है लाने को? लक्ष्मीनाथ has gone. Who is driving? Somebody. Okay, that's I just gave them names in the morning. मैं आप जब देखा दो नाम शॉर्ट हो गए, तो जो किताब में जो लिखा था मैं उसको नोटबुक लाना है. ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग. ओके, सब दीक्षा के लिए तैयार हो? हाँ, दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा ये जो शब्द है इसके वर्णन करते हुए, इसका अर्थ विश्लेषण करते हुए शास्त्र में वर्णन हुआ है, दिव्यज्ञानम यतो दद्यात् कुरिजात पापस्य संशयम् ततो दीक्षेति शाप्रक्ता देशिकोय तत्को हृदय. अर्थात दिव्यज्ञान प्राप्ति होने से पाप का क्षय या विनाश हो जाता है. इसलिए जो तत्वदृष्टा कोविद है, तत्व कोविद है, तत्व ज्ञानी, जो व्यक्ति तत्व को जानते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जिनको है, जो तत्व ज्ञानी है, तत्वदृष्टा है, उन्होंने इस जो प्रथा है दिव्य ज्ञान प्रदान और पाप का क्षय, इसको दीक्षा कहते हैं. दिव्य ज्ञान का दी, दिव्य ज्ञान का शुरू में कौन सी शब्द है? दी. और क्षय, पाप का क्षय होता है, तो इसलिए क्षा दी और क्षा दीक्षा. दिव्य ज्ञान का मतलब क्या होता है? दिव्य ज्ञान का मतलब तो होता है आध्यात्मिक ज्ञान. ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक है भौतिक ज्ञान और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान या दिव्य ज्ञान. आत्मा के विषय में जो ज्ञान है उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है. भगवान के बारे में जो ज्ञान वो है दिव्य ज्ञान. आध्यात्मिक जगत, चित जगत, वैकुंठ लोक, परम धाम, भगवत धाम का जो ज्ञान है उसे दिव्य ज्ञान कहा जाता है. तो ये ज्ञान प्राप्ति का जो तरीका है, ये आध्यात्मिक जगत का जो ज्ञान या आध्यात्मिक जगत का जो दर्शन है वो भौतिक दृष्टि से संभव नहीं होता. हमारे जो ये आंखें हैं, ये आंखें केवल भौतिक वस्तु ही दर्शन कर सकता है. चिन्मय जगत का दर्शन इस आंखों के द्वारा संभव नहीं होता. उस जगत का दर्शन का प्रक्रिया कैसी है? उस जगत का दर्शन का प्रक्रिया है मंत्र के ध्यान के द्वारा भौतिक कल्मश दूर हो जाता है. और ये भौतिक कल्मश, भौतिक जो गंदगी है जिसके द्वारा हमारा हृदय आच्छादित तो होने के कारण जिस ज्ञान की प्रभाव से, जिस ज्ञान को प्रकाश नहीं होता है, जो ज्ञान स्वतः ही आत्मा के साथ था, वो ज्ञान आवृत हो गया है, आच्छादित हो गया, ढक गया है. तो उस ज्ञान को प्रकाश कैसे संभव होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूप दर्पण को मार्जन, साफ करने से उस ज्ञान का प्रकाश होता है। इसका दृष्टांत ऐसे दिया जा सकता है कि एक बल्ब है, बल्ब से तो लाइट निकलता है, बल्कि वो बल्ब में अगर काला रंग लगाया गया है बल्ब के ऊपर, तो स्विच ऑन होते हुए भी कोई रोशनी निकलेगी नहीं। तो हमारा हाल वैसा ही हो गया, हमारा हृदय में आत्मा है, आत्मा के साथ दिव्य ज्ञान है, क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है। जैसे भगवान ज्ञानमय है, भगवान के अंश होने के नाते आत्मा में भी ज्ञान है, परंतु जो काला रंग की जितने सारे गंदगी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, काम लोभ दयाश्च चेतो एतोइर अनाभिधम, चेतो एतोइर, ये चेतना हमारा जो चेतना है, ये चेतना दिव्य ज्ञान जो आत्मा के साथ था वो इसकी आवरण के द्वारा आवृत हो गया है रजो और तमोगुण की प्रभाव से। तदा रजोस तमो भाव काम लोभ दयाश्चर्य, काम लोभ आदि के प्रभाव से हमारा हृदय कलुषित हो गया। तो अब देखिए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन से क्या होता है, शिक्षाष्टकम किसको किसको पता है, याद है, वेरी गुड। शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, चेत मतलब चित्त, जहां से चेतना उपजते हैं, चेत रूप जो दर्पण है, उस दर्पण मतलब शीशा, जहां हम अपना शकल देख सकता था, असल शकल असल रूप वो आच्छादित हो गया। बल्कि मंत्र जप से क्या होता है, सफाई होता है, मार्जनम सफाई होता है। मिरर में शीशा में अगर धूल पड़ा हुआ है तो उस शीशा में हम क्या अपना प्रतिरूप देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे। बल्कि जब धूल जब साफ हो जाता है तब हम देख सकते हैं। तो ये जो गंदगी है, ये गंदगी को, दिल का जो गंदगी है, इसको साफ करने का तरीका क्या है, इसको साफ करने का तरीका है मंत्र जप, चेतो दर्पण मार्जनम। तो ये जो आध्यात्मिक चेतना का उन्मेष होता है मंत्र के प्रभाव से, बल्कि मंत्र गोपन रखा जाता है। मंत्र इतना पावरफुल है, मंत्र में इतना आध्यात्मिक शक्ति है कि बहुत सावधानी से उन्होंने विचार करते थे किसके पास दिया जाए और किसको ना दिया जाए। जैसे कोई जो बहुत पावरफुल कोई जब चीज होता है तो आपके बच्चों को देते हैं खेलने के लिए, नहीं तो ये जो जो आणविक अस्त्र जो है एटम बॉम्ब भारत को है, बल्कि उसका चाबी किसके पास है, हर आदमी के पास दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर वो बटन दबा दे, दबा दिया तो ये एकदम सत्यनाश हो जाएगा। जहां जिसके पास, जिस देश में ये आणविक अस्त्र है, बहुत सावधानी से उसको रखा जाता है। और आजकल एक भावना हो गया है, चिंता हो गया है सबको कि टेररिस्ट को पास अगर एटम बम चला जाए, न्यूक्लियर वेपन्स चला जाए तो क्या होगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से इसको रखा जाता था। तो वैसे ही मंत्र जो है, इसमें इतना शक्ति है कि अगर कोई जो न लायक है, जो सही व्यक्ति अगर के पास अगर ये कोई खराब लोग के पास कोई जो अनभिज्ञ है जो ना लायक है वैसे व्यक्ति के पास अगर ये मंत्र चला जाए तो मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए पहले जमाने में ये मंत्र बहुत गोपन रखा जाता था। गुरु जिनके पास मंत्र था वो बहुत सोच समझ कर ये मंत्र देते। और मंत्र प्रदान कैसे होता था? दीक्षा के माध्यम। ये है दिव्य ज्ञानम जसो दत्ता, दिव्य ज्ञान दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? दीक्षा के माध्यम। अगर दीक्षा नहीं मिलता तो मंत्र भी नहीं मिलता। अगर मंत्र नहीं मिलता तो आध्यात्मिक चेतना का उन्मेष भी संभव नहीं होता। तो इसलिए दीक्षा की इतना जरूरत था। आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत के लिए दीक्षा का जरूरत था, क्योंकि इस मंत्र के माध्यम ही आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत होता था। बल्कि कलियुग में सब व्यक्ति इतना नालायक हो गया है कि भगवान में सोचने लगा तो कैसे इस लोग को आध्यात्मिक उन्मेष संभव होगा। कोई तो दीक्षा लेने के लायक नहीं बनेगी इस कली। मतलब गुरु के पास जगता के माध्यम एक मंत्र प्राप्ति कलियुग के लिए संभव नहीं हो, क्योंकि सब एकदम अनपढ़ है आध्यात्मिक विचार से, सब एकदम न लायक है, एकदम बेकार है सब कलियुग के लिए। तो इसलिए भगवान क्या किया, कलियुग के लिए केवल मंत्र ही नहीं महामंत्र को ऐसे बांट दिया सबको। ठीक है, ले लो। इसका कारण और एक भी है कि कलियुग में भगवान भक्तों के रूप में आए। कलियुग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव लेकर आए। राधा रानी है श्रेष्ठ भक्त, सारे भक्तों में से सबसे श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। और ये राधा रानी के भाव अंगीकार करके श्री कृष्ण ने आए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और आकर राधा रानी का जो भाव, राधा रानी का मनोभाव कैसे है, सब भक्त बन जाए। राधा रानी चाहते हैं कि सब कृष्ण के कृपा प्राप्त हो जाए। तो इसलिए कृष्ण जब राधा रानी के भाव को लेकर आए हैं तो कृष्ण ने ये महामंत्र जो कृष्ण को प्राप्ति के, कृष्ण के पास जाने का एकमात्र उपाय है। वृंदावन में कृष्ण के पास जाने के एक ही मात्र उपाय है महामंत्र। इस महामंत्र को सबको बांट दिया। चैतन्य महाप्रभु ने हर व्यक्ति के लिए इस महामंत्र को प्रदान कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक कृपालु है नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु कृपालु है। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायक। रूप गोस्वामी ने विचार कर रहे हैं ये व्यक्ति कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। ये कृष्ण प्रेम तो ब्रह्मा जी के लिए संभव नहीं, ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है ये कृष्ण प्रेम। शिव जी के लिए भी कृष्ण प्रेम दुर्लभ है, मिलता है बल्कि बहुत तकलीफ के बाद मिलता है। लक्ष्मी देवी के लिए भी ये कृष्ण प्रेम दुर्लभ है। तो ये जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं वो कौन है? जरूर ये कृष्ण ही होगा, क्योंकि कृष्ण के अलावा ऐसे कृष्ण प्रेम बांटने का अधिकार और किसी को नहीं। तो वैसे रूप गोस्वामी ने विचार कर रहे हैं ये कृष्ण चैतन्य जरूर कृष्ण ही है। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्तिशे। ये जरूर, ये जो कृष्ण चैतन्य है, ये कृष्ण चैतन्य जरूर श्री कृष्ण ही हो, क्योंकि कृष्ण के बिना कृष्ण के छोड़कर और कोई भी ये कृष्ण प्रेम ऐसे बात नहीं सकते। कृष्ण प्रेम कितना दुर्लभ है आपको पता है? मैं पहले बताया ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से भी बढ़कर है शिव जी, शिव जी से भी बढ़कर है लक्ष्मी देवी, वैकुंठ के नारायण के नित्य संगिनी। लक्ष्मी देवी एक बार नारायण को बोला कि मैं सुना आप वृंदावन में रासलीला विलास करते हैं, तो मैं सोचा कि आपको ये रासलीला थोड़ा मैं देखूंगा, ये रासलीला में मैं भी अंश ग्रहण करूंगा। तो नारायण बोला कि ठीक है, तो अगर तुम रासलीला में अंश ग्रहण करना चाहती हो तो तुमको कोई ब्रज गोपी को अनुगामी होके वृंदावन में पहुंचना होगा। लक्ष्मी जी बताए, मैं तो लक्ष्मी हूं, मैं किसी के सामने कैसे सर झुकाऊं, मैं लक्ष्मी हूं, मैं नारायण का नित्य संगिनी हूं, आपका नित्य संगिनी हूं, आपसे सबसे बढ़कर आप ही हूं, और आपको पत्नी होने के कारण मैं तो और किसी के सामने सर झुकाना नहीं सकूंगी। तो नारायण बोला कि अगर तुम ब्रज गोपियों का शरण नहीं ले सकोगे तो वृंदावन में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो लक्ष्मी देवी का मन में बहुत खेद हुआ और लक्ष्मी देवी तपस्या करने शुरू की। इतना तपस्या किया कि कृष्ण स्वयं उनके सामने आ पहुंचा। पूछा, लक्ष्मी क्या हुआ, ऐसा तपस्या क्यों कर रही है, क्या चाहना है तुमको? तब लक्ष्मी जी ने बताया कि मैं वृंदावन में जाना चाहता हूं, आपका रासलीला देखना। तब कृष्ण लक्ष्मी की ये मनकामना पूर्ण करने के लिए लक्ष्मी जी को अपना वक्ष में धारण करके ले गए। इसलिए कृष्ण के वक्ष में श्री वक्ष के रूप में लक्ष्मी देवी विराजमान। तो आप देखिए वृंदावन में रासलीला में प्रवेश कितना दुर्लभ, बल्कि ये वृंदावन में प्रवेश भी सुगम कर दिए हैं भगवान ये हरे कृष्ण महामंत्र के प्रदान करने के द्वारा। इतनी दुर्लभ है ये हरे कृष्ण महामंत्र, मतलब ये हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण प्रेम और सिनोनिमस समान है। हरे कृष्ण महामंत्र ही कृष्ण प्रेम है, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम ही केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो। इसलिए रूप गोस्वामी ने विचार किया कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम में गौर, ये जरूर कृष्ण जो कृष्ण प्रेम लक्ष्मी देवी के लिए भी दुर्लभ ब्रज प्रेम, उस प्रेम को ऐसे बांट रहे हैं, घर घर जाकर बुलाते हैं कि आओ ये कृष्ण प्रेम ले लो, ये हरि नाम जपो और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, हरिनाम जपो और वृंदावन में चले जाओ, हरिनाम का कीर्तन करो, हाँ राधा कृष्ण के ब्रज लीला में प्रवेश करो। तो इस रूप से भगवान कलियुग में कृपा किए, विशेष रूप से इस कलियुग में। ये कलियुग का विशेषता क्या है? ये कलियुग का विशेषता ये है कि इस कलियुग वैवस्व मन्वंतर का 28वां चतुर्युग का द्वापर युग के पश्चात इस कलियुग आया। ब्रह्मा का एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है, सहस्र युग पर्यन्तम् यद् अहर् ब्रह्मणो। अह का मतलब दिन, ब्रह्मा का एक दिन है 1000 चतुर्युग। चतुर्युग का मतलब सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, ये चार युग मिलाके एक चतुर्युग होता है। और इस ऐसी हजारों चतुर्युग से एक दिन होता है ब्रह्मा। और ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु आते हैं। ब्रह्मा का एक एक दिन में 14 मनु आते हैं। और एक एक मनु का आयुष्काल, मतलब एक एक मनु का मन्वंतर होता है 73 चतुर्युग। 73 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज ऑलमोस्ट 1000। तो ऐसे चतुर्युग 73 मन्वंतर में से चतुर्युग में एक मन्वंतर होता है। और सप्तम मनु है वैवस्वत मनु, जिसका काल अब चल रहा है। विवशान सूर्यदेव का पुत्र मन वैवस्वत मनु, इस मनु का जब 28वें चतुर्युग में जो द्वापर युग है उस युग में, उस द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और उसके पश्चात जो कली युग होता है उस युग में श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव और श्रीमती राधा रानी को कांति लेकर यहां आते हैं। राधा भावोद्युति शुभलिकां नौमी कृष्ण स्वरूपम। वो कृष्ण कौन है जो राधा रानी के भाव और राधा रानी के कांति लेकर आते हैं? वो कृष्ण है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं। इसलिए इस युग, इस समय एक विशेष समय, विशेष सौभाग्य प्रदानकारी समय। यहां हम इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र इतना आसानी से मिल गया, घर घर जाकर महाप्रभु ने प्रदान कर दिया। देखिए नित्यानंद प्रभु ने कैसे ये मंत्र बांट रहे थे। उन्होंने बोला यथिष्टंगड़े भ्रातो कुरु हरि हरि ध्यान मनीषम ततो ब संसाराम बुद्धि तरणो दायो मोई लगे इदं बाहुस्पतये रटति रटयंज प्रतिगृहं भजे नित्यानंदं भजन तदुकंदं निरवसि। नित्यानंद प्रभु का महिमा कीर्तन हो रहा है। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे? नित्यानंद प्रभु हर व्यक्ति के पास जाकर बोल रहे थे यथिष्ठ अंग्रे भ्रातो, भाई साहब अगर यथिष्ठ अंग्रे भ्रातो कुरु हरि हरि ध्यानो मनीषम, केवल हरि नाम करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, कुरु हरि हरि ध्यानो मनीषम, अगर तुम हरे कृष्ण महामंत्र जपोगे ततो ब संसाराम बुद्धि तरण दायो मई लगे। संसार मतलब इस भौतिक जगत, अम्बुधि का मतलब है सागर, संसार सागर, इस भव सागर से तुमको उद्धार करने का उत्तरदायी मैं बनूंगा। अगर तुम केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपोगे, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करोगे, तो मैं तुमको इस भव सागर को पार करने की जिम्मेदारी ले लू। गुरु हरि हरि ध्यान मनीषम ततो ब संसाराम बुद्धि तरण दायो मई लगे, मई लगे मैं जिम्मेदारी ले रहा। किसके जिम्मेदारी? संसार अम्बुधि तरण दायो। अम्बुधि का अर्थ क्या है? सागर, समुद्र। कौन सी सागर? ये एटलांटिक और पैसिफिक ओशन में, ये है संसार सागर। इसका अवधि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो पृथ्वी में, जो भूमंडल में हम हैं, ये भूमंडल सब ये भारतवर्ष या अंतर्वर्ती जो सबसे बीच का जो द्वीप है वो है ये भारत जहां हम हैं, और वहां सात द्वीप हैं, सात सागर हैं। एक द्वीप उसके चारों तरफ पहले हैं लवण समुद्र, जम्बूद्वीप, लवण सागर, लवण सागर के और चारों तरफ हैं शाप, शालमली आदि सप्तद्वीप, और सात द्वीप का सात सागर है लवण, इक्षु, सुरा, सर्पी। और उसके पार हैं, उसके परे हैं कारण सागर, कारण सागर के परे हैं ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति के परे हैं शिव जी का धाम महेश धाम, शिव जी के धाम के परे हैं वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक के ऊपर है मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में है वृंदावन। आप अटलांटिक ओशन पार हो सकते हैं, अटलांटिक ओशन क्या इंग्लिश चैनल है, एक चैनल है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, कोई कोई उसको तैरते हैं, बेस थोड़ा सा एक चैनल है, उसको ही पार करना इतना कठिन। तो ठीक है, हम जहाज से चढ़कर हम जा सकते हैं अटलांटिक या पैसिफिक, या हवाई जहाज से उड़कर हम जा सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं, बल्कि भवसागर पार करना संभव है। बल्कि नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और मैं आपको भवसागर पार कर दूंगा। संसाराम बुद्धि तरण दायो मई लगे, और कैसे बोल रहे हैं, इदम बाहु स्फुते रटति रटयन् च प्रतिक्रिय, ऐसे अपना बाहु स्फुते हाथ उठा के भावावेश में मगन होकर उन्होंने प्रतिगृह घर घर जाकर ऐसे बोल रहे हैं सबको। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने कृपा की। हरे कृष्ण महामंत्र जो महामंत्र है, सारे मंत्र का शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र। ऐसे तो मैं बता रहा था कि मंत्र ही ऐसे मामूली जो गायत्री मंत्र है वो उस मंत्र भी गोपन रखा जाता था, और सारे गण मंत्रों का शिरोमणि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो महामंत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह सबके पास बात हुई। सब मंत्र प्राप्ति के लिए तो दीक्षा का जरूरत नहीं है, महाप्रभु तो सबको दे चुके, महाप्रभु खुद बताया भी ये हरे कृष्ण देने महामंत्र देने के पश्चात, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, प्रभु कहे कोहिलाम, यही महामंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं तुमको ये महामंत्र बताया, प्रभु कहे कोहिलाम यही महामंत्र, इहा सबे जपोगिया कोरिया निर्बंध, निष्ठा के साथ हार्दिक भावने भाव से इस मंत्र को जप करो, इहा सबे जपोगिया कोरिया निर्बंध, यहां हईते सर्वसिद्धि हईले तुम्हार, इस महामंत्र उच्चारण करने से, महामंत्र जप करने से तुम सारे सिद्धि प्राप्त हो जाओगे, यहां हईते सर्वसिद्धि हईले तुम्हार, सर्वक्षण बोलो इथे विधि नाही आर, निरंतर ये मंत्र जपते रहो तब कोई विधि विधान नहीं रहेगा। महाप्रभु फिर भी बताया, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न कर, ये महामंत्र दीक्षा और पुरश्चर्या पवित्रीकरण का जो विधि है उसको अपेक्षा नहीं करता। जीवभा स्पर्श से आचंडले सवारे उद्धारे, केवल ये महामंत्र जीवा के स्पर्श होने से ही ये महामंत्र चंडाल तक सबको उद्धार कर देता है। जीवा स्पर्शे आ चंडाले, मतलब आ चंडाले, चंडाल तक सबको उद्धार कर देता है। यह है महामंत्र का प्रभाव, और ये मंत्र प्राप्ति के लिए दीक्षा और पुरुषचर्या का प्रयोजन नहीं होता। दीक्षा पुरुषचर्या विधि अपेक्षा जीवा स्पर्शे आचरण डाले सभा दे। इस तरह इस महामंत्र का प्रदान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। इस महामंत्र को प्राप्ति से हम बहुत आसानी से महामंत्र जप करके हम इस भौतिक जगत से, भौतिक जगत का बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा है। इसलिए कहने का मतलब ये था कि मंत्र प्राप्ति के लिए जो दीक्षा का जरूरत होता था, हरे कृष्ण महामंत्र के प्राप्ति के लिए दीक्षा का जरूरत नहीं। आप देखिए, मंत्र पहले मिला या दीक्षा पहले मिला? दीक्षा के लिए क्वालिफाइड बनने के लिए हाँ मंत्र 16 माला एक साल जप करना होता है। मंत्र पहले मिल चुका है। कैसे मिला है? चैतन्य महाप्रभु का कृपा से मिला। तो दीक्षा के और जरूरत क्या है? ऐसे लोग बोल सकते हैं कि दीक्षा का जरूरत क्या है। हाँ, एक कारण दीक्षा का एक उद्देश्य होता है मंत्र दान, और दूसरा कारण है दीक्षा का आत्मसमर्पण। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय शिष्य आत्मसमर्पण करते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, और उस समय कृष्ण उसको अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं। ये आत्मसमर्पण के लिए दीक्षा का जरूरत है। कृष्ण के प्रतिनिधि के माध्यम अपने आप को कृष्ण के पास समर्पण करना होता है। ये इसके द्वारा भक्ति जीवन का उन्मेष होता है, शुरुआत होता है। ये इसलिए दीक्षा का जरूरत है। तो ये जो दीक्षा है आत्मसमर्पण का पंथ, मतलब आत्मसमर्पण, आत्म मतलब स्वयं को, अपने को समर्पण किसके पास? भगवान के पास। भगवान के प्रतिनिधि के पास आप कर रहे हैं। बल्कि प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधि का मतलब क्या है होता है? प्रभुपद कहते थे ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। ट्रांसपेरेंट का मतलब है स्वच्छ, और वाया मीडियम माध्यम, जिनकी माध्यम कृष्ण के पास आपका लेन देन शुरू होता है, उनकी माध्यम। माध्यम जो है वो प्रतिनिधि है, वो एजेंट है। जैसे आप लोग बहुत सारे बिजनेसमैन हैं यहां, आपको पता है एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट क्या करता है? कंपनी और कस्टमर दोनों के बीच संपर्क स्थापन करता है ना। एजेंट कंपनी के माध्यम बनता है दोनों के बीच। जैसे आप सोचिए कि कोई कंपनी जो यहां है, कोई जापानीज कंपनी, जैसे टोयोटा, टोयोटा के एजेंट हैं सूरत में, है ना। तो आप अगर टोयोटा गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो क्या करता है, कहां जाते हैं? एजेंट के पास जाते हैं। और एजेंट क्या करता है? एजेंट आपको गाड़ी सप्लाई करता है, आपसे पैसा भी लेता है। तो पैसा क्या अपने जेब में रखता है? अगर आपने जेब में रखेगा तो एजेंसी बर्बाद हो जाएगा। एजेंट क्या करता है? एजेंट वो सप्लाई कर देता है, आपसे जो पैसा मिला था वो भगवान मतलब टोयोटा को सप्लाई कर देता है, और टोयोटा कंपनी उसको कमीशन देता है, है ना। तो ऐसे ही जो गुरु जो है वो भगवान का एजेंट होता है, वो खुद कुछ अपने लिए नहीं रखता है, उसका कर्तव्य है, उसका उत्तरदायी है, वो सब भगवान के पास भेजते हैं। आपसे जो मिलता है वो सिर्फ भगवान को दे देते हैं। तो आप उनके पास समर्पण कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि आप उनके पास आपको समर्पण कर रहे हैं अपने आप को? नहीं, उसको भली भांति पता है कि आप भगवान के पास समर्पण कर रहे हैं, और वो भगवान के माध्यम के रूप में भगवान के पास आपको समर्पण कर रहे हैं। ये एजेंसी मिलना बहुत कठिन है, मुश्किल है। बल्कि श्री प्रभुपाद ने ये एजेंसी आसान कर दिए है। प्रभुपाद जी है एजेंट, और प्रभुपाद सब एजेंसी दिए हैं। इस्कॉन में हम लोग जो गुरु के उत्तरदायी ले रहे हैं, हम लोग प्रभुपाद के एजेंसी कर रहे हैं, डायरेक्ट कृष्ण के पास नहीं। आप लोग कहां आए हैं? इस्कॉन में आए हैं। मतलब आप किसके पास आए थे? प्रभुपाद जी के पास आए। किसकी शिक्षा आपको मिल रहा है? प्रभुपाद जी का शिक्षा मिल रहा है। किसके माध्यम आपका आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है? प्रभुपाद जी के माध्यम। तो ये प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, संस्थापक आचार्य, संस्थापक है और साथ साथ आचार्य भी। ये इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन, इस्कॉन संस्थान का कौन तैयार किए थे, कौन संस्थापक है? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी इस्कॉन का संस्थापक, स्थापना किए, और साथ साथ प्रभुपाद इस संस्थान के आचार्य भी, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रतिष्ठान है, ये आध्यात्मिक प्रतिष्ठान में आचार्य का जरूरत होता है। तो वो आचार्य कौन है? श्रील प्रभुपाद। जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक इस संस्थान का संस्थापक आचार्य प्रभुपाद ही रहेगा। मतलब इस्कॉन में जो भी आएगा उसका गुरु कौन बनेंगे? श्रील प्रभुपाद। हमारा जीबीसी में एक रेजोल्यूशन भी है ऐसा कि जो भी इस्कॉन में आएंगे वही श्रील प्रभुपाद का शिष्य बनेंगे। प्रभुपाद उनका मुख्य शिक्षा गुरु, प्रीडोमिनेंट शिक्षा इन इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल, प्रीडोमिनेंट प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हर व्यक्ति के, हर इस्कॉन के जो भी आएंगे, केवल आज ही नहीं हजारों साल बाद भी जो आएंगे उसका गुरु प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु होंगे श्रील प्रभुपाद। इस सिलसिले में और एक विचार है कि हमारे जो ये संस्थान है, हमारे जो परंपरा है, ये परंपरा दीक्षा के माध्यम में, ये परंपरा शिक्षा के माध्यम में, शिक्षा परंपरा है या भागवत परंपरा। जैसे हम देखते हैं हमारे जो परंपरा है, हम देखते हैं रूप गोस्वामी के बाद है रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के पश्चात नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर रघुनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा नहीं लिए थे। नरोत्तम दास ठाकुर दीक्षा लिए थे लोकनाथ गोस्वामी से। बल्कि हम जो देखते हैं ये रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी के पश्चात नरोत्तम दास ठाकुर, ये दीक्षा का संपर्क में है। नरोत्तम दास ठाकुर के पश्चात कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले थे। अच्छा, ऐसे ये जो दीक्षा के संपर्क नहीं, ये संपर्क तो कैसे बना? जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती के बाद आ रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती के दीक्षा शिष्य नहीं थे, उनका दीक्षा गुरु था राधा दामोदर देव गोस्वामी। वैसे ही बलदेव गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण के बाद पश्चात जगन्नाथ दास बाबा, ये भी दीक्षा शिष्य नहीं थे। जगन्नाथ दास बाबा जी के पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर, दीक्षा शिष्य नहीं थे। भक्ति विनोद ठाकुर के पश्चात गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो भी दीक्षा शिष्य नहीं थे। तो इसका मतलब क्या बन रहा है? ये जो हमारा जो परंपरा है, ये परंपरा शिक्षा परंपरा है, दीक्षा परंपरा, दीक्षा के नाते ये परंपरा का निर्माण नहीं हुआ। इस सिलसिले में कभी कभी कोई आदमी हमें बोलते हैं कि आपका परंपरा ठीक नहीं, ये कोई परंपरा ही नहीं। विशेष रूप से राधा कुंड के कुछ बाबा जी लोग ऐसे बोलते हैं। मेरा साथ एक बार मुलाकात ऐसे हुआ, मुलाकात नहीं, बात बितंडा हुआ था। तो मैंने उनको एक प्रश्न किया था, चैतन्य महाप्रभु क्या बताए थे कि पृथ्वी के हर हर गांव में, शहर में ये कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा? उनको मानना ही पड़ा, पृथ्वी ते आशे जत नगरादि ग्राम सर्वस्व प्रचार करिबे। चैतन्य महाप्रभु ये भविष्यवाणी किए थे कि पृथ्वी के हर गांव में, शहर में ये कृष्ण नाम का प्रचार होगा, और जिनके माध्यम ये कार्य, महाप्रभु का ये भविष्यवाणी सफल हुआ, वो क्या महाप्रभु की धारा में है या नहीं? तो चुप हो गए। महाप्रभु की धारा है जिसके माध्यम महाप्रभु का कृपा बरस रहा है। महाप्रभु की कृपा बिना क्या प्रभुपाद जी ये कार्य करने के संभव होते थे? नहीं, महाप्रभु की कृपा के द्वारा ही ये संभव हुआ। तो महाप्रभु के मुख्य मूल प्रतिनिधि के रूप में आज हम किसको पाते हैं? तो इस विचार से हमें देखना होगा ये परंपरा सही है या नहीं। जो मूर्ख है वही बोलेगा दीक्षा के माध्यम ही केवल परंपरा, बल्कि जिसको सही ज्ञान है वो बोलेंगे कि दीक्षा अनुष्ठान है, विधि है, बल्कि उसका मूल भाव है शिक्षा। दीक्षा मिला बल्कि शिक्षा नहीं मिला, कुछ काम होगा? कॉलेज में एडमिशन हुआ, कॉलेज में शिक्षा नहीं के लिए गया, नहीं गया, कुछ काम होगा? हाँ, परीक्षा में पास करेगा नहीं। तो जरूरी क्या है, एडमिशन या शिक्षा? एडमिशन का जरूरी है, जरूरत है, और साथ साथ शिक्षा का भी, एजुकेशन का भी जरूरत है। बल्कि दोनों में से अधिक गुरुत्वपूर्ण कौन सी, ये है शिक्षा। तो वैसे हमें देखना होगा कि शिक्षा का ही महिमा अधिक है, और इसलिए हमारे जो ये परंपरा, जो ये परंपरा शिक्षा के माध्यम ही इसका विशेष विश्लेषण है। तो इस परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी एक विशेष स्थान प्राप्त हुए, और श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के स्थापना की। इस सिलसिले में श्रील प्रभुपाद का कृपा सबके ऊपर इस्कॉन के माध्यम बरस रहा। जो भी इस्कॉन में आएगा उसको ही प्रभुपाद का कृपा मिलेगा। ये कृपा आध्यात्मिक कृपा किस तरह इसका प्रसार होता है? शिक्षा के माध्यम, ज्ञान के माध्यम, दिव्य ज्ञान। मैं पहले बोला था दिव्य ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान प्रभुपाद जी के माध्यम, प्रभुपाद की कृपा के माध्यम ही बरस रहा। तो आप सब दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार हो तो क्या करना होगा? प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अपने आप को समर्पण करना। और इस्कॉन के सब भक्त के रूप में हम सब आपको जितने संभव सहयोग देने का कोशिश करेंगे। ऐसे तो सूरत में बहुत सारे प्रचारक हैं, सूरत में मंदिर हैं, तो ये सब इस्कॉन का श्रील प्रभुपाद का कृपा का स्वरूप है। यद्यपि प्रभुपाद अब अप्रकट हो गए हैं, मतलब भौतिक जगत में प्रभुपाद अब विराजमान नहीं है, बल्कि प्रभुपाद की कृपा बरस रहा है इस्कॉन के माध्यम। यह मंदिर है ना, इस्कॉन का मंदिर, तो इस मंदिर के माध्यम कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। यहां इस मंदिर के साथ जोड़े हुए हैं सब, इस्कॉन के साथ जोड़े हुए बहुत सारे भक्त लोग हैं, उन लोगों ने प्रचार कर रहे हैं। कल मैं, परसों मैं लेडीज प्रोग्राम में मैं बता रहा था कि प्रचार करने का जरूरत बहुत है, आप लोग प्रचार करते रहेंगे। ये प्रचार के माध्यम श्रील प्रभुपाद का कृपा आप बात करेंगे, बांटते रहेंगे। सूरत में बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, उनमें से मैं तो देखता हूं राधाचरण प्रभु का स्थान एक विशेष स्थान है, और ये आप भी, आपका भक्ति विकास महाराज से, राजेश, ओके राजेश, आई एम सॉरी राजेश, आई फॉरगॉट योर नेम, दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन आई डोंट कम टू सूरत दैट ऑफन। राजेश प्रभु प्रचार कर रहे हैं, और जयपता का महाराज के शिष्य का नाम क्या है? या मुक्तिमान प्रभु प्रचार कर रहे हैं, और माताजियों में से भी कर रहे हैं, श्रुति प्रिया माताजी बहुत प्रचार कर रहे हैं, हाँ निकुंज राधा माताजी प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे प्रचार करते रहे और सब मिलजुल के प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारा स्ट्रेंथ है हमारा यूनिटी। ये कली युग है, कली का प्रभाव का विस्तार कैसे होता है पता है आपको? कली कैसे अपना प्रभाव विस्तार करता है? कली अपना प्रभाव विस्तार करता है कलह के माध्यम, झगड़ा लड़ाई के माध्यम। कराल बदन क्रूढ़ कलिश्च कलह प्रिय। कलियुग जो है ये कलह प्रिय है, कली लड़ाई झगड़ा बनाने में बहुत ये है, एक्सपर्ट है। और कली वही कर रहा है, सर चारों तरफ ये झगड़ा लड़ाई के माध्यम कली सबको अलग कर दिया और सब कली के वश में आ गए। तो कली क्या कर रहा है? कली अधर्म बंधु है, कली अधर्म का प्रचार विस्तार कर रहा है। बल्कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम। जब अधर्म का विस्तार होता है तब भगवान आते हैं। इस कलियुग में भगवान किस रूप में आए हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के आकर कलियुग का जो युग धर्म है वो प्रदान किए हैं। कलियुग का युग धर्म क्या है? कलियुग का युग धर्म है जगई संकीर्तन प्राय जजन्ति ही सुने। कली का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। संकीर्तन सम्मक कीर्तन बहुभी मिलित्वा जब कीर्तनम, बहुत सारे आदमी जब इकट्ठा होकर कीर्तन भगवान का महिमा गाते हैं वो है संकीर्तन। तो देखिए कली सबको अलग कर रहा है और चैतन्य महाप्रभु सबको जोड़ रहे हैं। तो इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु कली युग के प्रभाव को खंडन कर रहे हैं। तो ये कली युग का जो प्रभाव है इसको दूर करके हमको महाप्रभु का संकीर्तन यज्ञ रूप धर्म को इस युग के लिए संस्थापन करना होगा। तो इसलिए जहां भी द्वेष, जहां भी संघर्ष, जहां भी झगड़ा लड़ाई का संभावना होता है, हमें समझना होगा कि ये कली का प्रभाव हो रहा है, इसको हमको दूर करना होगा, इसको हमको जीतना होगा। कैसे? हम इकट्ठा होकर सब। प्रभुपाद जी भी बोले थे, प्रभुपाद इस भौतिक जगत से अप्रकट होने के पहले प्रभुपाद जी एक बहुत गंभीर निर्देश सबको दे रहे थे। वो निर्देश था, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर। तुम कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हो? कोऑपरेट, कोऑपरेट का हिंदी शब्द क्या है? मिलजुल के काम कर, हाँ, मिलजुल के काम कर, कोऑपरेट। तुम कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के भगवान का वाणी प्रचार करोगे, इस्कॉन को सेवा करोगे, भगवान का महिमा प्रचार करोगे, भगवान का संकीर्तन का प्रचार करोगे? इसके द्वारा ही तुम्हारा, हमारा प्रति तुम्हारा प्रेम का प्रकाश होगा। हम सब बहुत बोलते थे, प्रभुपाद हम इतना प्यार करते हैं आपको, कभी कभी भक्त लोग लिखे भी थे, इसके जवाब में ही प्रभुपाद ये बोले थे। एक भक्त लिखा था, प्रभुपाद मैं आपके लिए मेरा जीवन देने के लिए तैयार हूं, आप मेरा आयु आप ले लीजिए और आप यहां रह जाइए। प्रभुपाद बोला कि तुम्हारा असल, मेरे प्रति असल प्रेम का प्रकाश होगा कि तुम एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करोगे। इसके आज हम देखते हैं कितने सारे भक्त थे, आज कोऑपरेट ना करके उन लोग अलग हो गए हैं, इसको हम छोड़कर चले गए हैं। हमको ये विचार सही रूप से करना चाहिए कि कभी 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 भी इस्कॉन को छोड़ के प्रभुपाद के चरण कमलों का सहारा छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाना, चाहे कितना भी कठिन हो, कितना भी मुश्किल हो, कितना ही असुविधा हो, हमको इस्कॉन में रहकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते रहे और कोऑपरेट करते रहे। प्रभुपाद जी की सेवा के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के सब कुछ करेंगे, ये भावना लेके हमें आगे बढ़ते रहना। ये कली युग में कृष्ण भक्ति का एक विशेष महिमा है, क्योंकि देखिए कृष्ण भक्ति बिना भगवत धाम को प्राप्ति, भौतिक जगत का वर्णन कर से छुटकारा संभव नहीं हो। भक्त्या माम अभिजानाति जावान जश्चाश, भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुमको इस ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता प्रजच्छति तदहं भक्ति उपहितं अश्नामि प्रजा। भक्ति ही सब कुछ है भगवान के लिए। हम चाहे थोड़ा सा पत्ता भी भगवान को दे दे, थोड़ा सा पानी भी भगवान को देते हैं, अगर भक्ति के साथ हम देंगे तो भगवान उसको ग्रहण करेंगे। तदहं भक्ति उपहितं अश्नामि, भक्ति का मतलब है प्यार, हार्दिक भावना लेकर प्यार के साथ भगवान को सेवा करना है, भगवान के प्रति सब कुछ अर्पण करना है। और ये है महाप्रभु का कृपा के प्रकाश। और इस कृपा की कैसे प्रकाश हुआ है, हरि नाम के माध्यम, हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति। कलियुग में इसके अलावा और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। और कलियुग में भगवान तो एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और भगवान और एक रूप में भी आए हैं कली, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली युग में अपना नाम के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए, अर्थात ये जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान के नाम समन्वित ये महामंत्र ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण नाम और कृष्ण स्वयं अभिन्न अभिन्नताद नाम 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 चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नताद नाम नाम। नाम और नामी अभिन्न है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। जय नाम श्री कृष्ण, जो नाम है कृष्ण नाम वही कृष्ण है। बल्कि ये नाम और नामी में थोड़ा अंतर है, जब तक नाम शुद्ध नहीं उच्चारण होता है, जब तक शुद्ध नाम नहीं होता है तब तक नाम कृष्ण नहीं बनता। मतलब जब तक नाम में अपराध रह जाता है तब वो नाम नहीं बनता, कृष्ण नाम नहीं बनता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि वो नाम नाम नहीं, वो अपराध है। उच्चारण हो रहा है कृष्ण हरे कृष्ण, बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहा है वो नाम का उच्चारण नहीं है, अपराध का उच्चारण हो रहा है। तो ये नाम अपराध से मुक्त होकर नाम करना चाहिए। नाम का कितने अपराध है, ये हरि नाम में कितने ऐसे कितने अपराध है, 10 विध अपराध। आप सबको पता है ये 10 विध अपराध सबको पता है। अच्छा, तो प्रथम अपराध क्या है? अच्छा, ये माइक्रोफोन दे देना, एक माइक्रोफोन है। द्वितीय अपराध हुआ है, बहुत अच्छा। आप सब तृतीय अपराध, आप तृतीय अपराध पता है? ओके प्रकाश, प्रकाश को मैं पूछा पीछे रहते हुए भी, क्योंकि प्रकाश मुझे बोला था पहले आप मुझे कुछ पूछना मत। क्योंकि प्रकाश सबके सामने कुछ बोलने में शर्माता है। बहुत अच्छा, सो यू हैव ओवरकम योर शाइनेस। चतुर्थ अपराध, चतुर्थ अपराध वैदिक शास्त्र और वैदिक शास्त्र का अनुगामी जो शास्त्र है उसका निंदा करना। पंचम अपराध, हरिनाम का महात्म के काल्पनिक समझना। षष्ठ अपराध, हरिनाम में अर्थ प्रदान करना, अर्थवाद। मतलब हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण। बल्कि अगर कोई बोलता है सोचता है कि काक कृष्ण का अर्थ है ये, री का अर्थ है ये, शा का अर्थ है ये, ना का अर्थ है ये, तो कृष्ण का नाम का अर्थ हुआ ये, ऐसा कुछ नहीं। सीधा विचार, कृष्ण नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है बस, और कोई अर्थवाद इसमें नहीं होना चाहिए। सप्तम अपराध, नाम बल से पाप करना। अष्टम अपराध, अर्थात वेद में कर्मकांड है, कर्मकांड के प्रभाव से पुण्य अर्जन होता है। तो कोई अगर सोचेगा कि हरे ना हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, कीर्तन करने से बहुत पुण्य होगा और पुण्य के फल स्वरूप हमको स्वर्गलोक प्राप्ति होगा, तो ये भी अपराध है। कर्मकांड का भौतिक सुख भोग इस नाम के उद्देश्य में। नवम अपराध, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का महिमा प्रचार करना। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, जो मानते हैं भगवान को नहीं मानते हैं, उनके पास जाके अगर हम बताएंगे तो वो और भी विद्वेषी बन जाएगा, तो इसलिए उनके पास जाके बताना है। जो श्रद्धालु हैं वैसे व्यक्ति के पास ही केवल हरे कृष्ण महामंत्र का महिमा कीर्तन करना चाहिए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र से क्या होता है, भौतिक जगत के बंधन से छुटकारा प्राप्त होकर हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने को लायक होंगे। तो अगर कोई सोचता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय भौतिक आसक्ति भी ये रखे बना रखे, तो ये एक अपना। तो ये जो सब अपराध है इससे मुक्त होकर नाम करना चाहिए, क्योंकि नाम प्रभु है, नाम स्वयं कृष्ण है। जब अपराध होगा तो नाम प्रभु का कृपा प्रकाश नहीं है।